श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आद्गुरये नमः जुगाद्गुरये नमः सद्गुरये नमः श्रीगुरुदेवये नमः। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। घट घट में विराजमान अंतर्जामी प्रभु पिता परमात्मा के चरणों का ध्यान करते हुए अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन वेदांत के श्री श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उन्हीं की पावन तपस्थली में तत्व जिज्ञासा को लेकर के उन्हीं के द्वारा दर्शाए हुए मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए यहाँ पर विराजमान सभी श्रोतागण सबको नमन। हम लोग हर रोज स्वामी जी के द्वारा जो इस पावन स्थान पर वेदांत की गंगा ज्ञान गंगा की का प्रवाह चलाया गया है उसमें डुबकी लगाने के लिए उसमें स्नान करने के लिए तत्पर हुए हैं। महापुरुषों का संसार में आना सभी अस्मदादि जीवों के कल्याण अर्थ होता है। उनका प्रयोजन कोई नहीं होता संसार में आने का, क्योंकि जन्म मरण दोहों में ना ही जन पारोपकारी आए, वह जन्म मरण से रहित होते हैं, वह अवतरण होते हैं अवतरित होते हैं हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। स्वामी जी ने इस पावन स्थान पर अपना सारा जीवन हम लोगों के कल्याणार्थ लगाया। उन्हीं की पावन स्मृति पावन पुण्यतिथि आ रही है 20 तारीख को, उसके उपलक्ष्य में हम वेदांत की कुछ चर्चा कर रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद का जो प्रथम मंत्र है उस पर हमने 2 दिन विचार किए हैं, और दूसरा जो मंत्र है उस पर आज चर्चा करेंगे। वेदांत को श्रवण करने के लिए, वेदांत के अधिकारी बनने के लिए पहले कुछ साधनों की जरूरत होती है। भाव वेदांत में ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान साधना की चर्चा है, तो उससे पहले ज्ञान तक पहुंचने के लिए निष्काम कर्म की आवश्यकता है, निष्काम उपासना ध्यान भक्ति की आवश्यकता है। जैसे गुरु महाराज जी ने लिखा है कि जो कर्म हम करते हैं उसका फल क्या है, वैसे जो कर्म हम करते हैं उसका दृष्ट फल भी होता है संसार में। वो तो हम सबको मालूम है कि कोई भी कर्म करते हैं उसका अदृष्ट फल है, उसका अदृष्ट फल भी होता है, तत्काल भी फल होता है, अदृष्ट भी फल होता है। तो कर्म का फल वास्तव में कर्म को फल रहित होकर के निष्काम रूप से करना चाहिए। यदि हम सकामता से कर्म करेंगे तो फिर फल अवश्य भोगना पड़ेगा, और फिर ये श्रृंखला चलती ही रहेगी। कर्म करेंगे तो फल भोगेंगे तो फिर वापस आएंगे, ये फिर श्रृंखला चलती ही रहती है। वास्तविक जो कर्म हम करते हैं, कर्म का अभ्यास किस लिए है, तो हमारे को संकेत दिया है गुरु महाराज जी ने कि ज्ञान कारण कर्म अभ्यास। जो कर्म को पुनः पुनः हम करते हैं, अभ्यास करते हैं, वो किस लिए है, ज्ञान कारण, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। वास्तव जो कर्म का फल है वो क्या है, ज्ञान। लेकिन वो ज्ञान रूपी फल तभी मिल सकता है जब हम निष्कामता से कर्म करते हैं। तो ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, फिर कर्म की श्रृंखला, कर्म का त्याग नहीं करने के लिए कहीं भी कहा गया कि कर्म को छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म के बिना तो आपकी शरीर यात्रा भी नहीं चलती, कर्म करेंगे तभी आपका शरीर चलता है। जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या कर्म करते हैं, अभ्यास करते हैं, योगा करते हैं, आसन करते हैं कि शरीर हमारा ठीक रहे, तो कर्म जब शरीर को ठीक रखने के लिए भी कर्म की जरूरत है, तो कर्म को छोड़ने का कहीं में भी विधान नहीं है। लेकिन कर्म की जो फल की आसक्ति है उसको छोड़ना चाहिए, फल आसक्ति से रहित होकर के कर्म करना चाहिए। तो ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, फिर कर्म जब ज्ञान के लिए करते हैं तो आज जैसे आज वाला जो मंत्र है इसमें कहा है कि कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजि विशेष शतम समाह, कुर्वन्ने वे कर्माणि कि कर्म करते हुए ही और 100 साल जीने की इच्छा से कर्म करना चाहिए। आज के मंत्र में ऐसा है कि 100 साल तक जीने की इच्छा से कर्म करना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा। इस मंत्र पर कई प्रकार की चर्चा विद्वान लोग करते हैं कि जो पहला मंत्र हमने विचार किया था, ईशावास्य मिदम सर्वम जात किंत जगत्याम जगत। उस वो मंत्र कहते हैं कि जो ज्ञानी हैं, जो तत्ववेता हैं, उनके लिए है। और ये जो दूसरा मंत्र है, ये अभी जिनका ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ उनके लिए है, ऐसा भी कहते हैं कि उनको कहा है कि जो अभी तत्व जिज्ञासा के लिए तत्पर हैं, अभी उनकी जिज्ञासा पूर्ण नहीं हुई, ज्ञान अभी उनका दृढ़ नहीं हुआ, उनको कर्म करना चाहिए, ऐसा भी कहते हैं विद्वान लोग। लेकिन यहाँ पर दोनों प्रकार का आदेश है कि कर्म करते हुए ही 100 साल तक जीने की इच्छा से कर्म करना चाहिए। तो 100 साल तक का अर्थ यहाँ पर क्या है, क्योंकि इस कलयुग में 100 साल तक ही मानी जाती है आयु, इसलिए ऐसा है। परंतु इसका तात्पर्य यह है कि जब तक भी किसी की आयु है तब तक उसको कर्म करना चाहिए, भाव कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, कर्म अवश्य करना चाहिए। लेकिन कर्म कैसे करना चाहिए, यह दूसरा प्रश्न है। कर्म तो हम करते ही हैं, कोई भी आदमी कर्म छोड़ता नहीं जब तक उसकी आयु है, आयु पर्यंत कर्म करता है, कोई भी ऐसा नहीं जो बिना कर्म के एक क्षण भी रहता है, हर क्षण क्षण में हम कोई कर्म करते हैं। परंतु कर्म का रहस्य नहीं जानते, कर्म कैसे करना चाहिए। तो अभी हम बतला रहे थे कि ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, जो कर्म का रहस्य है, जो मूल सिद्धांत है, वो किस लिए कर्म करना चाहिए, ज्ञान के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो हम कर्म करते हैं किस प्राप्ति के लिए, ये तो हम जानते ही हैं कि जितने संसार के कर्म करते हैं उसमें कितने कर्म हम ऐसे करते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए होंगे, बहुत कोई एक होगा जो ज्ञान के लिए कर्म करता है। हमारी हर कर्म के फल की इच्छा अलग अलग होती है, ये हम जानते ही हैं। पूजा पाठ करते हैं, घर का काम करते हैं, तो उसकी हमारी वासनाएं अलग अलग होती है, पहले हम उस कर्म का फल देखते हैं तभी कर्म करते हैं। नहीं तो कहते हैं कि जो मंद बुद्धि जिसको हम बोलते हैं, बिना प्रयोजनम मंदोपि न प्रवर्तते, जिसको हम बहुत मंद बुद्धि कहेंगे, यदि उसको भी आप कोई कर्म करने के लिए कहो तो वह सबसे पहले आपसे पूछेगा कि हमारे को मिलेगा क्या। हम उसको भले मूर्ख मानते हों लेकिन उसके अंदर भी ये जिज्ञासा है कि मेरे को ये करने से क्या मिलेगा। तो जो बुद्धिमान समझता है आदमी, वो तो बिना प्रयोजन के कर्म करता ही नहीं कभी, उसको कहीं ऐसा लगता हो कि हमारे को इस कर्म करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तो कर्म में जाएगा ही। और तो बहुत दूर की बात है, हम लोग तो यहाँ पर संस्कारी हैं सब, कई लोगों को कहो कि सत्संग में आया करो तो कहते हैं वहाँ से हमारे को क्या मिलेगा, ऐसा भी होता है। हम लोग तो स्वामी जी के मार्गदर्शन से चलते हैं, हमारे को मालूम है। आम लोगों को कहो कि आप मंदिर में, गुरुद्वारा में, मस्जिद में कहीं जाया करो, भगवान का नाम लिया करो, तो कहते हैं क्या मिलेगा उससे, हमारे को फुर्सत ही नहीं है हमारा। इसका मतलब जो संसार के कर्म करते हैं उसमें से उनको लाभ दिखता है, और जहाँ आना उसके लिए लगता है कि नहीं, जहाँ आने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कर्म तो हम कर रहे हैं लेकिन कर्म का फल हमारा और वासनाएं होती है, जो कर्म करते हैं उससे संसार की प्राप्ति चाहते हैं, संसार में यश चाहते हैं, संसार में मान प्रतिष्ठा चाहते हैं। कर्म इसलिए करते हैं ज़्यादातर लोग, मकान बनाएंगे, धन इकट्ठा करेंगे, कोठी बनाएंगे, जो ये सब वासनाएं होती है ना, पुत्र इच्छा होती है, वित्त इच्छा होती है कि हमारा संसार में जश हो, प्रतिष्ठा हो। लेकिन जब तक हम संसार के फल चाहते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, तो वही हमारे को मिलेगा, निष्काम जब तक नहीं होंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो कहते हैं गुरु महाराज जी के ज्ञान कारण कर्म अभ्यास। अभ्यास कर्म का किस लिए करना चाहिए कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब कर्म करते हैं तो ज्ञान प्राप्त होने पर फल क्या मिलता है, क्यों कर्म की श्रृंखला जब तक छूटेगी नहीं तब तक जन्म मरण का चक्र भी नहीं छूटेगा। कर्म करेंगे तो उसके फल के लिए जाएंगे, फल भोगेंगे तो फिर जन्म में आएंगे। तो ये श्रृंखला कर्म का काम कर्म का फल जो है वो जन्म मरण है, कभी छूटेगा नहीं। लेकिन ज्ञान रूपी जो फल है कर्म का उसका उसके बाद हमारे को क्या मिलता है, कर्म करने से संसार भी मिलता है, कर्म करने से ज्ञान भी मिलता है। जब निष्काम होकर के कर्म करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति होने से फिर क्या होता है, तो वहाँ पर निश्चित किया है गुरु महाराज जी ने कि ज्ञान कारण कर्म अभ्यास और ज्ञान भयात कर्म नाश। यहाँ पर सिद्ध किया कि ज्ञान रूपी फल भी कर्म से ही मिलता है, लेकिन जब ज्ञान रूपी फल मिलता है तो फिर क्या होता है, ज्ञान भयात कर्म नाश। जब ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणी, भगवान कहते हैं कृष्ण कि ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणी, जब ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है तो उससे क्या होता है, कर्म जो है दग्ध हो जाते हैं। कर्म दग्ध का अर्थ है कि कर्म के जो संस्कार हमारे अंदर बैठे होते हैं वो दग्ध हो जाते हैं। कर्म तो जिस समय करते हैं वो बाहर है, अंदर क्या बैठता है, उस कर्म का संस्कार बैठता है। तो जब ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है तो फिर हमारे अंदर जो कर्मों के संस्कार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जब कर्म के संस्कार मिट जाते हैं तो फिर जन्म मरण की समाप्ति हो जाती है। तो एक कर्म के द्वारा ही हम यहाँ तक पहुँचते हैं। जैसे मानो हमारे कहीं कांटा लग जाता है, जंगल में हम जा रहे हैं तो कांटा हमारे लग गया, तो उस कांटे को निकालने के लिए क्या चाहिए, एक दूसरा कांटा चाहिए। वहाँ सुई तो हमारे पास नहीं है, दूसरा कांटा वहाँ से लेंगे और उससे पैर वाला कांटा निकालेंगे। तो जब हमने कांटा निकाल लिया तो जो कांटा था हाथ में उसको क्या करेंगे, फेंकेंगे ना, उसको फेंक देंगे, वो भी हमारे काम का नहीं है। इसी प्रकार जब हम कर्म करते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो जब हमारे को ज्ञान हो जाएगा तो कहते हैं ज्ञान भयात है कर्म नाश। वहाँ तक पहुँचने के लिए है, कर्म सहायक है वहाँ पहुँचने के लिए। मुक्ति तो ज्ञान के द्वारा ही होती है, ज्ञान तक पहुँचने के लिए कर्म है। तो जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे उसके बाद भी हम कर्म करते रहेंगे तो फिर तो श्रृंखला बनी रहेगी। और वहाँ पहुँच के कर्म छोड़ने की बात आज के मंत्र में है कि जब ज्ञान हो जाएगा तो कर्म छोड़ेंगे कैसे, ज्ञान पहयातः कर्म नाश। और कुर्वन्येवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम् समाः। 100 साल तक जीने की इच्छा से कर्म करना चाहिए ऐसा कहा है। लेकिन ज्ञान का फल है कि ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान अग्नि से कर्म दग्ध हो जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यते सर्व संशयाः क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, ऐसा भगवती श्रुति कहती है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि, जो हमारी हृदय में ग्रंथि है, गांठ है, किस चीज़ की गांठ है, जड़ और चेतन की, जीव और ईश्वर की, पाप और पुण्य की, सत्य असत्य की, सुखी दुखी पने की, कर्ता भोक्ता पने की गांठ है कि नहीं, द्वैत है हमारे अंदर कि मैं कर्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये जड़ है, ये चेतन है, ये गांठ पड़ी हुई ना हमारे अंदर, उस गांठ को तोड़ना है। जब तक गांठ है तो फिर एकता नहीं होती। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, भेदन हो जाती है वो गांठ, भेदन हो जाता है उसका, कट जाती है वो। कब कटती है? तस्मिन दृष्टे परावरे, जो परावर परावार से रहित जो परमात्मा जो ब्रह्म है उसका जब साक्षात्कार होता है, हमारी ब्रह्म से एकता होती है, हमारी जो द्वैत है उसकी निवृत्ति होती है, तो विद्यते हृदय ग्रंथि, जो हमारे हृदय में जड़ चेतन की गांठ थी उसका भेदन हो जाता है। जब तक गांठ है हृदय में, द्वैत है, तभी तक हमारे अंदर संशय है। द्वैत के कारण संशय हो रहा है। पहले भी हमने बताया था ना कि ये प्रतिबंध है, संशय भी एक प्रतिबंध है, रुकावट, भ्रांति जो है ज्ञान नहीं होने देती। तो जब हमारा साक्षात्कार होता है, ज्ञान होता है, उसके बाद क्या होता है, जो हमारी चिज्जड़ की ग्रंथि है उसका भेदन हो जाता है। और सिद्ध्यते सर्व संशयाहा, जितने संशय हमारे अंदर होते हैं, विपरीत भावना होती है, असंभावना होती है, अनेक प्रकार के संशय हमारे अंदर हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होता तो ऐसा कर देता, कितने संशय हमारे अंदर होते हैं। वो सभी संशयों की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा होती है, जो हमारे अंदर संस्कार रूप में बैठे होते हैं, कई जन्म जन्मांतरों से हमारी श्रृंखला चल रही है, इसीलिए वो जल्दी नष्ट नहीं होते, गांठ इतनी पक्की हो गई है। ये तुलसीदास महाराज जी ने कहा है ना कि यद्यपि वृथा मृषा है शूटत कठिनई, ये है तो मृषा है तो मिथ्या, चिद जड़ की ग्रंथि पड़ी गई। ये कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि चिद और जड़ की ग्रंथि हमारे अंदर, ग्रांठ जो बजी हुई है, बंधी हुई है, यद्यपि मृषा है तो मिथ्या, झूठी गांठ है, फिर भी शूटत कठिनई, छूटती नहीं है जल्दी, मिथ्या होने के बावजूद भी नहीं छूटती। छूटने का मतलब उस गांठ को काटने के लिए कोई संसार का हथियार नहीं चाहिए। बाहर कहीं गांठ पड़ी हो तो आप उसको चाकू से कैंची से काट सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर गांठ पड़ी है उसको काटने के लिए कोई संसार का हथियार नहीं चाहिए। संसार में जो वस्तुएं, बाहर जो सत्य वस्तु होती है, उसको काटने के लिए कुछ क्रिया से उसको हम काट सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन जो मिथ्या वस्तु है उसको हम कैसे काटेंगे, उसको नहीं हटा सकते क्रिया से, उसको ज्ञान से हटा सकते हैं, उसको क्रिया की जरूरत नहीं होती। तो हमारे अंदर जो संशय हैं, संस्कार हैं, वो किसी भी संसार के साधन से नहीं हट सकते, वहाँ पर क्रिया की जरूरत नहीं है, वहाँ पर ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान से काटेंगे वो। तो जब ज्ञान हमारे अंदर, ज्ञान मतलब प्रकाश होता है, प्रकाश करते हैं, जब हमारी एकता होती है, हमारे भ्रम की निवृत्ति होती है, जब हम भ्रम को हटा देते हैं विचार से, वहाँ पर विचार से हम इसको काट सकते हैं। अविचार से ही सारा बंधन है, अविवेक से ही बंधन है, विवेक के द्वारा ये काटा जाएगा, उससे अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। तो कहते हैं जब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है तो सिद्ध्यते सर्व संशयाहा, जितने संशय हैं उनकी निवृत्ति होती है। और जब संशय की निवृत्ति होती है, चिज्जड़ की ग्रंथि हट जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, क्षीयते चास्य कर्माणि, फिर जितने कर्म हैं वो क्षीयते, क्षीण हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। लेकिन सबका ये जो चिज्जड़ की ग्रंथि को निवृत्ति है, संशयों की निवृत्ति है और कर्मों की निवृत्ति है, होती कैसे है, तस्मिन दृष्टे परावरे, उस परमपिता परमात्मा ब्रह्म का जब साक्षात्कार होता है तभी ये सब फल हमारे को मिलते हैं। तो ये कहते हैं कि 100 साल तक जीने की इच्छा से कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए का भाव है कि कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। जो ज्ञानी है उसके लिए भी आदेश है और अज्ञानी के लिए तो है ही, सन्यासी के लिए भी इसको मानते हैं, निषेध भी करते हैं शंकराचार्य, और इसका विधान भी करते हैं कि ज्ञानी के लिए भी यदि मान ले हम कि ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए, तो कहते हैं कि ज्ञानी जब तक उसकी आयु है, यदि वो अपनी आयु पर्यंत कर्म करता भी रहे तो उसको कोई इसका आसक्ति नहीं होती है, क्योंकि उसको ज्ञान हो चुका है। न कर्म लिप्यते नरे, ऐसा विधान है कि कुर्वन्येवे कर्माणि जिजी विच्छेद शतम समाह एवं कोई नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। उस अज्ञानी को तत्ववेता को कर्म लिप्त नहीं करता, बांधता नहीं है, और जो संसारी है उसके लिए, जो संसारी का मतलब अभी जिसका ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ उसके लिए क्या, वो 100 साल तक जीने की इच्छा से कर्म करे, और कैसे करे कर्म, तो कर्म इस दृष्टि से करे जैसे पहले मंत्र में कहा था कि सर्वत्र ईश्वर दृष्टि बना करके, ईश्वर दर्शन करके, और दूसरा कहा था कि भोग में त्याग वृत्ति से, और तीसरी बात कही थी कि धन में लोभ ना हो। ये जब ऐसी दृष्टि से कर्म करेगा जो संसार में रहने वाला है, अभी जिसको ज्ञान की दृढ़ता नहीं हुई, वो 100 साल तक जीने की इच्छा से कर्म करे, पर इस दृष्टि से करे कर्म कि सर्वत्र ईश्वर दृष्टि हो, भोग में त्याग हो, भोग मतलब काम में त्याग हो, और धन में लोभ ना हो, इस प्रकार के से जब कर्म करे, 100 साल तक जीने की इच्छा से कर्म करे, तो जब इस प्रकार कर्म करेगा तो न कर्म लिप्यते नरे। कहते हैं जब तुम इस प्रकार कर्म करोगे तो ये आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है, और कोई आपके पास उपाय भी नहीं है, और कोई साधन भी नहीं है, आपके पास यही साधन है, क्योंकि हम ज्ञान के अभी अधिकारी नहीं हुए, तो कर्म छोड़ देंगे तो अधा पतन हो जाएगा, क्योंकि यदि हम 1 कोस चल सकते हैं तो 10 कोस नहीं पहुंच सकते, तो 10 कोस हम कहेंगे हम तो पहुंच नहीं सकते, तो 1 कोस भी तोड़ना छोड़ देंगे तो फिर कैसे होगा। भाव जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार हम कर्म करेंगे तो धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और कोई कहते हैं आपके पास उपाय भी नहीं है यदि कर्म छोड़ दोगे, तो इसलिए कर्म कहते हैं आपको करना चाहिए, पर फल की इच्छा से रहित तो होकर के कर्म करना चाहिए, क्योंकि और इसमें से एक बात और भी निकलती है, ये बात इस मंत्र से निकलती है कि सिद्धांत में अकर्म जो है वो परवान नहीं है कि कर्म छोड़ दो, इससे निकलती है बात कि कर्म करना चाहिए। कर्म करना चाहिए किस लिए करना चाहिए, जब हम आसक्ति छोड़ करके, निर्लोभ होकर के, निर्वासनिक होकर के कर्म करते हैं, ईश्वर दृष्टि से कर्म करते हैं, तो उससे क्या होता है कि कर्तव्य बुद्धि हमारे अंदर आती है। कर्म तो हम करते हैं, लेकिन कर्म को जब हम निर्लोभ निर्वासनिक मतलब निष्काम हो करके करते हैं, तो वो कर्म हमारा क्या है, धर्म बन जाता है। सभी कर्म जो धर्म नहीं होते, जब वासना से रहित हो करके करते हैं तो वह जो कर्म है वो धर्म बन जाता है। तो धर्म से क्या होता है, धर्म के द्वारा हम ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। धर्म बीच में साधन है, अर्थ का भी साधन है, धर्म से अर्थ भी मिलता है, धर्म से काम भी मिलता है, वह भोग भी मिलता है, और धर्म से मोक्ष भी मिलता है। तो धर्म रक्षति रक्षता, जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। जब धर्म हमारे अंदर से चला जाएगा तो हमारी रक्षा भी नहीं हो सकती, हम कहते हैं ना, यदि ईमान नहीं रहा, धर्म नहीं रहा, तो कुछ भी नहीं बचा। जे हम ऐसा कहते हैं ना, जब आपने धर्म ही छोड़ दिया तो आपके पल्ले में क्या बचा। तो जो हम कर्म निष्कामता से करेंगे, निर्लोभता से करेंगे, तो उसका फल क्या है कि वो धर्म बन जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि आप आसक्ति को छोड़ करके तो कर्म को करो। और उसके बाद बात ये है कि जो कर्म है वो हमारे को बांधता कैसे है। यही होता है ना, कर्म से बंधन होता है। तो कौन सा कर्म जो है हमारे को बंधन में डालता है, जीव को कर्म बंधन कैसे करता है। जैसे निष्काम कर्म करने से बंधन नहीं होता है, कर्म को धर्म के लिए करेंगे तो फिर तो बंधन नहीं होगा। लेकिन जब उस कर्म को हम लोभ वृत्ति से करेंगे, भोग की एकत्रता के लिए करेंगे, तो हमारे को बांधेगा। जिस कर्म को करने से किसी हमारे आस पड़ोस वाले का दिल दुख जाता है, या किसी का अधिकार छीना जाता है, किसी के पीड़ा होती है, कोई दुखी होता है हमारे कर्म करने से, तो वो कर्म हमारे को बांधता है, उसी से बंधन होता है। कर्म हम करते आ रहे हैं संसार में, लेकिन उतना ज़्यादा जितना कर्म करते हैं उतना ही हम ज़्यादा बांधते जाते हैं। कि नहीं, ये तो हमने अपने जीवन में देखा है। आप सुबह से शाम तक कर्म करते हैं, लेकिन आज जो आप कर्म करते हैं, शाम तक कभी बैठ करके सोचिए कि कर्म करने के बाद शाम को जब बैठेंगे, संध्या को बैठेंगे, जब सुबह बैठेंगे, तो उससे हमारे को शांति कितनी मिली है। आपने धन भी इकट्ठा किया, आपने कोठी भी बनाई, सब सुविधाएं आपके पास हैं, लेकिन सुविधा होते हुए भी आपको शांति कितनी है, कितने शांत हैं आप, आपका मन कितना शांत है। कभी होता है कि अभी तो हमारा 20 साल हो गया, अब हमने कर्म तो कर लिया, इतना हमारे पास आ गया, अब थोड़ा कम कर दें, ऐसी कभी इच्छा होती है? कभी भी नहीं होती। 20 क्या 50 साल के बाद भी कभी ऐसा कभी नहीं सोचा किसी ने कि अब तो बहुत हो गया, अब इसके बाद अपना कुछ चिंतन करना चाहिए। और बढ़ता जाता है, होता है कि अभी नहीं, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लेंगे, अभी तो बच्चे की शादी करनी है, अभी तो उसके बाद में पोते की शादी करनी है। मतलब हमारे को तृप्ति होती नहीं है, कर्म करने से हमारी इच्छा बढ़ती जाती है। लेकिन कर्म करने से जब इच्छा बढ़ती जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे अंदर कर्म कर रहे हैं हम कर्तव्य बुद्धि से नहीं कर रहे हैं, लोभ से कर रहे हैं, त्याग से नहीं कर रहे। त्याग होता तो हमारे को शांति मिलती, हमारे में जीवन में कोई तब्दीली आती। जब मानो तब्दीली नहीं आती, मानो सत्संग भी एक कर्म है जो हम कर रहे हैं, सत्संग में आते हैं ना, कितनी बार हमने वेदांत सम्मेलन श्रवण किया, कितनी बार गुरुद्वारे जाते हैं, पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, लेकिन जीवन में कितना फर्क पड़ा है। जब हम संसार के कर्मों का हिसाब किताब करते हैं सुबह शाम बैठ के कि आज इतना बच गया, तो फिर जब सत्संग करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, उसका हिसाब किताब तो कभी नहीं किया कि हमारे जीवन में तब्दीली कितनी आई है, हमारी वाणी में कितनी मधुरता आई है, कितनी हम मीठी वाणी बोलने लगे हैं, कितने लोगों को उपकार करते हैं हम हर रोज, कितने गरीबों का भला करते हैं। कर्म के बाद जीवन में तब्दीली आनी चाहिए। सत्संग रूपी भी कर्म है ना, सत्संग करते हैं तो बिन सत्संग विवेक न होई। जब ये बात कहते हैं कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, तो फिर सत्संग तो हमारे को प्राप्त है, तो विवेक क्यों नहीं हुआ। ये पंक्तियां केवल श्रवण करने मात्र नहीं होती ना, तुलसीदास महाराज जी ने कहा है, कोई छोटे मोटे आदमी ने नहीं बोला कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। तो इसका मतलब उनका है कि सत्संग में विवेक होता है। तो विवेक का क्या अर्थ होता है, बतलाया था हमने कि सत्य सत्य वस्तु विवेक, सत्य और असत्य वस्तु का यथार्थ ज्ञान होना ही विवेक है। तो हमने कितनी बार सत्संग किया है, कितने साल किया है, तो हमारे को विवेक क्यों नहीं हुआ। कोई पूछे आपसे कि आपको विवेक हुआ है, कभी भी कोई होगा जो कहेगा, दृढ़ता से बोलेगा कि हाँ मेरे को विवेक हो गया, कोई भी नहीं बोलेगा, कहेगा नहीं महाराज जी अभी तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब कर्म, दूसरे कर्मों का तो हिसाब हम लगाते हैं, हमारे को महसूस भी होता, अनुभव भी होता है कि हमने इतना पैसा लगाया था तो इतना उसमें से हमारे को फायदा हुआ है, लेकिन इस कर्म का हमारे को अभी अनुभव नहीं होता कि हमारे को कुछ न कुछ विवेक हुआ है। यदि विवेक हो जाए तो फिर हमारा जीवन ऐसा नहीं हो सकता जैसे जीवन में हम जी रहे हैं। जो आज हालात हैं ना हमारे संसार के वो ऐसे ना हों, समाज के हालात ऐसे ना हों, यदि हम अपने शरीर से छूटें विचार करके, यदि हमारे अंदर विवेक हो तो हम शरीर से छूट करके परिवार में आ सकते हैं। अभी तो हम केवल हमारे शरीर में बंधे हुए ना, आसक्ति हमारी शरीर में है, विवेक होता तो जहाँ से छूटते कि ये जो हमारा शरीर है और हम हैं इसमें क्या अंतर है, विवेक से छूट सकते ना, कर्म तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन कर्म करने से, सत्संग रूपी कर्म करने से, पूजा पाठ करने से हमारा देह ध्यास कितना छूटा है, हम शरीर से कितना अलग हुए हैं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं केवल शरीर के लिए, अपने सुख के लिए करते हैं, दूसरे के सुख के लिए भी कुछ नहीं करते हम, परिवार के सुख के लिए करते हैं, अपने सुख के लिए, यदि परिवार के लिए भी करते हैं वो हमारे को भ्रम होता है। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं, पति पत्नी से करती है, पति पत्नी से करता है, भाई बंधुओं का एक दूसरे से प्रेम है, तो ये हमारी केवल हम अपने मन से भी कहते हैं, ये उपनिषद में ही कहा है कि कोई किसी से प्रेम करता है तो अपने लिए करता है, दूसरे के लिए नहीं करता। हम किसी से भी, यदि हमारा बच्चे से प्रेम है, बच्चे की पालन पोषण किस लिए करते हैं कि बड़ा हो के हमारे को सुख देगा, और उसको देखने से भी हमारे को शांति मिलती है, सुख मिलता है ना, तो सुख हमारे को मिलता है, बच्चे को थोड़ी मिलता है, बच्चे को तो सुख नहीं मिलता, बच्चा जब तक हमारे कहने में है तो तब तक हम सुखी हैं, तो जब हमारे कहने में नहीं रहे बच्चा तो वही था ना, इसका मतलब हम बच्चे को सुख थोड़ी दे रहे थे, सुख तो अपना ले रहे थे, वही बच्चा जब हमारे कहने में नहीं लगता तो फिर भी हम उसको सुखी क्यों नहीं करते, उसने तो कुछ नहीं किया, वो तो पहले जैसा था वैसा ही था, हमारे अंदर कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारे को सुख नहीं मिल रहा, तो हम अपने सुख के लिए उससे प्रेम करते थे, अब वो हमारे कहने में नहीं हो तो हम प्रेम नहीं करते, इसका मतलब हमारे को सुख नहीं मिल रहा ना, तो हम उसको सुखी नहीं करना चाहते, हम तो अपना सुखी होना चाहते हैं, जब तक उसको देख के हमारे को प्रसन्नता होती है, अनुकूल है, अनुकूल ज्ञान से सुख मिलता है, प्रतिकूल ज्ञान से दुख मिलता है, और सुख दुख तो एक वृत्ति है, भोग है, वो जो हमने बात कही थी भोग में त्याग चाहिए, सुख का भोग है, दुख का भोग है, सुख दुख का साक्षात्कार ही भोग है, तो हम सुख का भोग कर रहे हैं, दुख का भोग कर रहे हैं, तो भोग में त्याग कहाँ होगा, यदि भोग में त्याग होता, कहा था ना तेन त्यक्तेन भुंजी था, हमारी ईश्वर दृष्टि भगवत दृष्टि होने से हमारे अंदर भोग का त्याग होना चाहिए, तो हम तो सुख दुख का भोग अभी तक बराबर कर रहे हैं, तो दृष्टि हमारी ईश्वर दृष्टि कैसे हुई, कर्म करने का फल हमारे को क्या मिला, कर्म करके हम और ज्यादा बंधते जा रहे हैं कि नहीं, कर्म कर्त बदे अहमेव, एक ये भी पंक्ति लिखी है कि कर्म करने से अहम बढ़ता है, कर्ता भोक्तापन और ज्यादा दृढ़ होता है कि मैं करता हूँ, मैं ये किया, मैंने ये किया, और करने के साथ फिर भोगना भी पड़ता है। आप कहते हैं कि भोगना कैसे है, कई बार संसार की जो यात्रा है उसमें कहते हैं कि ये आपको कर्म का भोग है आपका, कोई बीमार हो जाता है, किसी को कष्ट होता है, तो आप कहते हैं कि ये आपके कर्म का भोग है, भोग का पता थोड़ी चलता है कि भोग क्या है, बीमार होना भोग है क्या, मानो शरीर में कोई व्याधि आ गई तो ये भोग थोड़ी है, भोग तो हम अंदर करते हैं, अनुभव करते हैं, भोग करते हैं अनुभव करना, केवल शरीर का बीमार होना भोग नहीं है, शरीर में व्याधि आना भोग नहीं है, सुख दुख का साक्षात ही भोग है। जब हमारे शरीर में कष्ट होता है तो शरीर को कुछ नहीं होता है, ये आप देखिए, शरीर को नहीं कुछ होता, शरीर को अनुभव नहीं होता कि मेरे में कोई दुख है, शरीर को थोड़ी होता है। आँख में, हमारे कान में कहीं भी कोई व्याधि आती है तो शरीर थोड़ी बताता है आपको कि मैं दुखी हूँ, शरीर ने कभी बोला आपको? तो अनुभव कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। भोग तो शरीर का है लेकिन अनुभव कौन कर रहा? हम कर रहे हैं। जो भी कोई व्याधि आई शरीर में आई तो शरीर तो कभी बताता नहीं है। मानो आपको किसी ने कोई वचन कहा, कल भी मैंने बोला था, किसी ने कोई कड़वा वचन बोला आपको, तो आप कहते इसने हमारे को गाली निकाली है। वो जो गाली उसके मुंह से निकली है उसने आपके शरीर का तो कोई नुकसान नहीं किया, ना आप उसे घटे हैं ना बड़े हैं, लेकिन आपको कष्ट क्यों हुआ? इसका मतलब उसका शब्द जो हमारे कान से अंदर आया है उसका भोग हमने अंदर किया है, मतलब अनुभव किया है दुख का। दुख का अनुभव करना भोग है कि नहीं? उसने गाली निकाली तो आपको तो कुछ नहीं हुआ ना, शरीर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप कहते मैं दुखी हुआ हूँ आपके ऐसा वचन बोलने से, मैं दुखी हुआ हूँ, तो इसका मतलब आपने दुख का साक्षात्कार किया, अनुभव किया दुख का, यही भोग है। सूक्ष्म विचार करेंगे तभी इसे निकल सकते हैं, ऐसे नहीं निकल सकते। ऐसे तो बता देंगे कर्म करना चाहिए, निष्कामता से कर्म करना चाहिए, तो निष्कामता, प्रश्न ये हो रहा है कि निष्कामता कैसे आएगी? जैसे माता जी कह रहे थे कि गर्मी का अनुभव बहुत ज़्यादा होता है, एक मतलब हमारा प्रश्न है ना, तो उस गर्मी का जो हमारे को प्रकोप लगता है, शरीर को कुछ नहीं होता गर्मी से, शरीर को नहीं होता कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पसीना ही आएगा ना, और क्या होगा? शरीर ने तो कभी कहा नहीं कि मैं मतलब जब मेरे को गर्मी लग रही तो मैं दुखी हूँ, शरीर ने तो कुछ नहीं बोला। उस गर्मी का अनुभव कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो शरीर में कोई भी मतलब व्याधि आती, कोई डिफेक्ट पड़ता शरीर में, शरीर को नहीं कुछ भी होता, किसी बीमारी के कारण शरीर पतला हो गया या काला हो गया तो शरीर तो कुछ कहता ही नहीं है, हम दुखी क्यों होते हैं? इसका मतलब है कि उसका भोग हम करते हैं, क्योंकि हमने कर्ता पहले माना था अपने आप को, शरीर को, शरीर का कर्ता हम मानते हैं ना, कर्म का कर्ता अपने आप को मानते हैं, इसलिए जब कर्ता जब तक मानेंगे तब तक हमारे को भोगता बनना पड़ेगा। शरीर कुछ नहीं करता है, शरीर भी जड़ है, और ईश्वर कुछ नहीं करता, ब्रह्म कुछ नहीं करता, ईश्वर कहाँ करता है कुछ? हम कुछ नहीं करते, शरीर का जो धर्म है उसको हम अपने में लेते हैं, मन का जो धर्म है अपने में लेते हैं। जो अभी मैं कह रहा था कि दुख का सुख का जो अनुभव करता वो कौन करता है? मन, हम थोड़ी करते हैं। फिर मन को हमने अपने साथ जोड़ दिया, जो भी हमारे को अनुभव होता है वो मन में होता है, अंतःकरण में होता है, लेकिन अंतःकरण तो हम नहीं हैं। थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो और सोचेंगे, पहले तो बाहर से अंदर जाओ कि बाहर शरीर में जो कुछ हुआ उसको शरीर ने नहीं बतलाया, उसका अनुभव अंतःकरण में हुआ, और अंतःकरण में जो हुआ उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे मन में क्या गड़बड़ी है, बुद्धि में क्या गड़बड़ी है, तो इसका मतलब जब हम ये जानते हैं तो हम बुद्धि से अलग होकर जानेंगे कि नहीं? साक्षी होंगे तभी जानेंगे। दो आदमी को झगड़े को एक जानता है तीसरा, लेकिन वो झगड़ालू नहीं है, वो बताता है कि मैंने सैड में खड़े होकर के इनको देखा है, इसका मतलब उनके अलग था ना वो। तो हमारी बुद्धि में जो गड़बड़मय है, हमारे मन में जो गड़बड़ी है, उसको यदि हम जानते हैं तो हम अलग हैं, यही तो साक्षीपना है। यहाँ पर तो आना है, जब साक्षी हो जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर कर्म हमारे को कोई दुखी नहीं करेगा, लेकिन हम कर्म करके दुखी होते हैं, ये तो आप हर रोज अनुभव करते हैं कि कोई कर्म करने से आप दुखी होते हैं, कोई कर्म करने से आप सुखी होते हैं, कोई अच्छा कर्म करते हैं तो सुखी होते हैं, बुरा कर्म करते हैं तो दुखी होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कर्म कोई भी करो, भले अच्छा करो भले बुरा करो, तो उसका फल तो यही होगा ना, सुखी या दुखी। तो सुख दुख का भोग तो हम करते ही रहेंगे जब तक कर्म करेंगे, जब तक हम भोगता हैं, कर्ता भोगता हमारे में है, तब तक ये कहते हैं कि आपको कर्म करना चाहिए। जो ज्ञानी है वो कर्म करता भी रहे 100 साल तक तो उसको अभिमान नहीं होता। ये आजकल जो मंत्र है इसमें कहा कि 100 साल तक कर्म करता हुआ जिए, तो जो ज्ञानी होगा वो 100 साल तक जब तक उसकी आयु है कर्म करता भी रहेगा, तो ना कर्म लिप्यते नरे, उसको कर्म बांधेगा नहीं, हमारे को बांधता है, क्योंकि हम उस कर्म के कर्ता भी हैं और भोगता भी हैं। और कर्तृत्व भोगतृत्व जो धर्म है वो हमारा नहीं है, वो किसका है? मन का है। कर्तृत्व मन में रहता है, भोगतृत्व मन में रहता है। तो जब हम उस मन को जोड़ करके वो कर्म करते हैं, सकामता से करते हैं, तो भोग भोगना पड़ेगा, वो धर्म नहीं बन पाएगा। केवल कर्म भ्रम से तीन हो, ऐसी बात कही है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, लिखते हैं एक पंक्ति, केवल कर्म भ्रम से तीन हो। केवल जो आप कर्म करते हैं, केवल कर्म, केवल का अर्थ क्या होगा? केवल का अर्थ होता एव, कर्म ही करते हैं आप, तो सकामता से करते हैं, फल की इच्छा से करते हैं जब तक, तो फिर क्या है? भ्रम ही चिन्ह हो, मान लो कि वो भ्रांति ही है। महाराज जी कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, कि जब तक आप केवल कर्म की दृष्टि से कर्म करते हैं, धर्म दृष्टि नहीं है, कर्म की दृष्टि मतलब कर्तव्य बुद्धि नहीं है आपकी, त्याग नहीं है, आसक्ति है आपकी, तो उतनी देर तक कर्म आपका क्या है? धर्म है, भ्रांति है। धर्म करो अनुरागो, आगे वाली आदि पंक्ति है, केवल कर्म धर्म से चिन्ह हो, धर्म करो अनुरागो, इसलिए आप कर्म को धर्म मान के करो, अनुराग से, प्रेम से। तो करते तो हम ही प्रेम से ही हैं, कर्म को बहुत प्रेम से करते हैं हम, अपने कर्म में इतना ज़्यादा मतलब होते हैं, लीन होते हैं कि हमारे पास में से कुछ गुजर जाए तो पता नहीं चलता। जब आप कहीं बैठे हो ना, कर्म में इतना लीन हो जाते हैं, आपको कोई पूछे हम तो जा रहे थे आपने देखा नहीं, आप कहते नहीं हमारे को नहीं मालूम हुआ, तो क्या हम नहीं थे कर्म में लीन? थे हम में, लेकिन किस प्रकार थे? निष्कामता से नहीं थे ना, प्रेम कर्म में थोड़ी करना है, धर्म में करना है। धर्म करो अनुराग, धर्म में अनुराग, धर्म में राग, धर्म में करो राग, कर्म को धर्म बनाओ। कर्म को धर्म बनाने का तात्पर्य क्या है? कि उसको कर्तव्य बुद्धि से करो, धर्म के लिए करो। कर्म से आपको धर्म प्राप्त हो, धर्म एक ईश्वर का स्वरूप है। जब आपके अंदर धर्म आ जाएगा तो आपको इंसानियत का पता चलेगा कि कौन सी किसको इंसान कहते हैं। जिसके पास धर्म नहीं होता उसको आप क्या बोलते हैं? इसके पास क्या बैठना? जिसका धर्म ही चला गया उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो हम ये सोचें कि हम दूसरे की दृष्टि तो रखते हैं, दूसरे पर तो दृष्टि होती है, अपने पर दृष्टि नहीं होती। दूसरे के कर्म को देखोगे तो उसका कर्म आपके अंदर आ जाएगा। अपने कर्म पर दृष्टि रखें हम कि हमारा जो कर्म है वो कैसा है। दूसरे का कर्म तो हमारे को दिखता है, लेकिन अपना कर्म हम कहते हैं हम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। दूसरे की कमी क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमारे अपनी कमी हमारे को नहीं दिखती, अपना ख्याल ही नहीं कभी किया, विचार ही नहीं किया, दूसरे का विचार करते हैं। दूसरे का जब तक विचार करते रहेंगे तो अपने में नहीं आ पाएंगे। जब तक हम अपना विचार नहीं करते तब तक कर्तव्य बुद्धि हमारे में आएगी नहीं। इसलिए कर्म की फिलॉसफी है कि कर्म करो तो उसके अंदर ध्यान से उसका विचार करके, उस कर्म पर विचार करो कि इस कर्म का फल क्या होगा। फल का हम विचार तो करते हैं, लेकिन उस फल को सोच लेते हैं कि ये संसार की हमारी जो हमारी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उसको पूर्ण होगा इस फल से, हमारी ये आवश्यकता पूर्ण होगी, जो हमारा लक्ष्य है उससे हम इतर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। आप यात्रा में चल रहे हैं तो यात्रा में चलने माने आप गाड़ी से जा रहे हैं, तो आगे कहीं गाड़ी में जाते जाते ट्रैफिक जाम हो गया तो आपको गाड़ी क्या है घुमानी पड़ेगी। ادھر ادھر دائیں بائیں کہیں گھمانی پڑے گی گاڑی، لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے گاڑی گھمائی ہے تو آپ کو منزل بھول گئی، منزل تو نہیں بھولے آپ، منزل آپ کے دماغ میں رہتی ہے کہ جانا ہم نے اس منزل پہ ہے، کہیں سے بھی جائیں ہم کرم کرتے ہوئے اپنا ٹارگیٹ بھول جاتے ہیں، بات تو یہ ہوتی ہے کرم تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن یدی کرم کرتے ہوئے ہمارا جو لکش ہے اس کو یاد رکھیں گے، جیسے کبیر جی کا سلوک آتا ہے بھائی نام دیو جی اور ترلوچن جی دونوں متر ہیں دونوں، تو ایک بار ترلوچن جی نے سوچا کہ نام دیو بڑے اچھے بھگت ہیں بھگوان کے، چلو ان کا درشن کراتے ہیں، مل کے آتے ہیں کوئی بھگوت چرچا ہوگی، تو انہوں نے جا کر کے دیکھا، آئے ان کے پاس تو دیکھا تو نام دیو جی اپنا کپڑے کا جو کام تھا ان کا کر رہے تھے، اپنے کام میں مست تھے، انہوں نے کہا بھی یہ کیسے بھگت ہیں بھائی، ان کو تو فرصت ہی نہیں ہے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے ترلوچن جی آئے ان کے نہیں آئے، وہ اپنی مستی میں اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو کبیر جی نے لکھا کہ یہ ترلوچن جی کہتے ہیں کہ یہ نام دیو یہ کیسی بھگتی ہے، تمہارے کو تو پربھو کی یاد کب آتی ہوگی، تم تو اپنے کام میں لگے ہوئے ہو، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے بھکتی، میں تو آپ کے پاس آیا تھا بڑی اچھا سے کہ آپ بڑے بھکت ہیں، تو آپ تو اپنے کرم میں سنسار میں لپت ہیں، تو نام دیو جی نے کہا کہ آپ کی درشٹی جیسی ہوگی ویسی سلٹی ہو جاتی ہے، نام دیو جی کہتے ہیں ناما کہے تلوچنا مختے رام سمار، وہ کہتے ہیں نام دیو جی کے ترلوچن جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرم کرنا چھوڑ دیجئے، ہمارے اندر چیتنا ہے، ہم اندر سے اپنے ٹارگیٹ سے جڑے ہوئے ہیں، ہم بھگوان کے ساتھ اندر سے جڑے ہوئے ہیں، کام چھوڑ کے نہیں بھگوان سے جڑا جاتا، ناما کہے تلوچنا مختے رام سمال، ہاتھ پاؤں کا کام سب چیت نرنجن نال، وہ کہتے ہیں ہاتھ پاؤں سے کام کرو اپنا، لیکن جو اپنا چت ہے اس کو پربھو پتا پرماتما سے جوڑ کر کے رکھو، تو کہنے کا مطلب ہے بھائی اپنا جو تاتپریہ ہے جہاں ہم نے جانا جو ہمارا لکش ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے، وہاں پر جب بھول ہوتی ہے تب کرم میں ہماری کرتویہ بدھی نہیں رہتی، ہم دوسرے کا حق کیوں چھیننا چاہتے ہیں، ٹارگیٹ بھول جاتے ہیں، کرتویہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا یہ کرتویہ تھا، اس لیے ہم دوسرے سے دھکا کرتے ہیں، دوسرے سے چھین کے کھانا چاہتے ہیں، ایشور بدھی کا یہ پھل ہے کہ جس کے اندر ایشور بدھی آتی ہے، جو کہتے ہیں کہ سوئم کھاتا ہے وہ جیو ہے، جو کسی کو کھلا کر کے کھاتا ہے وہ ایشور ہے، یہی انتر ہے، جب اس کی ایشور بدھی ہوگی تو پہلے وہ آس پڑوس والے کے بارے میں سوچے گا، اپنے گھر میں اس کی درشٹی اپنے شریر سے ہٹے گی تو پریوار میں آئے گی، پریوار سے ہٹے گی تو سماج میں آئے گی، سماج میں سے ہٹے گی تو راشٹر میں آئے گی، اس لیے کہتے ہیں نا راشٹر کی رکشا سماج کی رکشا کون کر سکتا ہے، جس نے اپنے سے بدھی ہٹائی ہے پریوار میں لایا ہے، پریوار میں سے ہٹا کر کے سماج میں جو آئے گا وہی تو سماج کو سدھارے گا، لوگ کہتے ہیں نا ہم سماج سدھارک ہیں، لیکن سماج میں آئے گا، سماج میں کیسے آئے گا، کیول شریر لے کر کے کوئی سماج میں آ کے شریر کو سماج کو سدھار نہیں سکتا، وہ تو شریر اس کا سماج میں کھڑا ہے نا، اندر سے کہاں کھڑا ہے، جب اندر سے برتی سماج میں آنے کا مطلب ہے کہ اس کی ویشٹی بدھی کو چھوڑ کر کے سمشٹی بدھی ہوگی، اس کی بدھی میں وشالتا ہوگی، وشالتا کا ارتھ ہے کہ اس کو سربتر ایشور بھگوت درشن ہوں گے، تب وہ دوسرے کا بھلا کر سکتا ہے، تو کرم اس پرکار سے کرنا چاہیے کہ نشکامتا ہو کرم میں، بھوگ میں تیاگ ہو، دھن میں نرلوبھ ہو، تو پھر کرم کرنا چاہیے، یہ کرم جو ہے یہ دھرم پرشارتھ کی جہاں پر بات کہی ہے، پیچھے والے سلوک میں تین پرشارتھ کہے تھے، کام اور موکش ارتھ، اور اس میں دھرم پرشارتھ کی بات کہی آج کل سلوک میں کہ 100 سال تک کرم کرتے ہوئے ہی جنہیں کی اچھا کرنے چاہیے، لیکن کرم کیسے کرنا ہے، وچار یہاں پر کرنا ہے کہ کرم میں ہمارے کو وچار کر کے چلنا ہے کہ کرم کا پھل کیا ہے، اس پھل سے ہمارے کو کیا فائدہ ہوگا، ہم پھل سے چھوٹنا بھی ہے، फल से छूटने का एक ही उपाय है जो अभी बतलाया था कि तस्मिन दृष्टे परावरे, जब साक्षात्कार होगा तब कर्म की निवृत्ति होगी। कर्म सहायक है ज्ञान में पहुंचने के लिए, लेकिन कर्म में ही हम जुड़े रहें तब भी ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। कर्म छोड़ना भी नहीं है और कर्म की आसक्ति छोड़नी है, कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म तो करना ही है, लेकिन ज्ञान जब हो जाए तब कर्म की आसक्ति छूटती है, ये ज्ञान का फल है। कर्म नहीं छूटता है, कर्म तो होता ही रहेगा लेकिन उसकी आसक्ति छूट जाती है, जो उसमें वासनाएं थी वो छूट जाती है। जब वासना से रहित होकर के करेंगे तो फिर कहते हैं कि जो काम कर्म करता हुआ निष्कर्म हो जाता है उसको प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, वो प्रभु के साथ अभेद हो जाता है, क्योंकि कर्म जो है वो शरीर से होता है, इंद्रियों से होता है, प्राणों से होता है, मन से होता है, मानसिक कर्म है, शारीरिक कर्म है, वाणी के कर्म है, तीन प्रकार के कर्म हैं, मानसिक कर्म और शारीरिक कर्म और वाणी के कर्म। तो तीनों पर ध्यान देना चाहिए कि मन से हम कौन से कर्म करते हैं, पहले तो शरीर के कर्मों का नहीं पता चलता, शरीर से कर्म करते हैं, किसी की हिंसा करते हैं, शरीर से किसी को पीटते हैं, किसी को मारते हैं, ये शरीर का कर्म है कि नहीं। शरीर से हम जो अच्छे कर्म करते हैं वो भी हैं, बुरे कर्म भी तो करते हैं, तो कौन सा कर्म कैसे करना चाहिए वो तो शास्त्र बताता है। भाव है कि विहित कर्म करने चाहिए, जो शास्त्र ने कहे हैं कर्म, उस कर्म को करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, जो शास्त्र विहित कर्म है, निषिद्ध कर्म नहीं। शरीर के कर्म, फिर मानसिक कर्म, वाणी के द्वारा भी आप कर्म करते हो, वाणी के द्वारा कर्म क्या करते हैं, शब्द जो हम बोलते हैं, कई कहते हैं कि आपने शब्द क्या बोला, आपने हमारे को मार डाला, क्या हुआ, शब्द ही तो बोला आपने, कर्म किया कि वाणी का कर्म है ऐसा कि उसको आपने कोई शस्त्र से मारा नहीं है, बोल से उसकी हिंसा कर दी आपने, तो कौन सा कर्म, वाणी का कर्म था लेकिन निषिद्ध कर्म हुआ। मीठा बोलना चाहिए कि नहीं, मीठा बोलना उससे किसी को प्रसन्नता होती है, किसी को नहीं होती, स्वयं को भी होती है, दूसरे को तो होती है, तो इसलिए कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। मन के द्वारा भी आप किसी का बुरा सोचते हैं तो वो आपका बुरा कर्म हो गया, लेकिन मन का कर्म है, आप कहेंगे ऊपर से तो किसी को पता नहीं चलता कि आपने उसको कुछ कहा है, लेकिन अंदर से आपने उसका बुरा चितना शुरू किया, तो उससे उसको कष्ट थोड़ी होगा, उसको तो बाद में होगा, पहले आपको कष्ट होता है, आपके अंदर पहले बुराई आती है। तो दूसरे का भला करने के लिए, दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। तो तीन प्रकार के कर्म है, शारीरिक, मानसिक और वाणी के कर्म, तो इन सबको जो है विहित कर्म, जो भगवान ने कहा है, जो शास्त्रों ने कहा है, जो महापुरुष कहते हैं, उसके अनुसार वाणी बोलनी चाहिए, उसके अनुसार मन में चिंतन करना चाहिए, उसके अनुसार शरीर से कर्म करना चाहिए, तब हम हमारी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो आज जहां पर रखते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्री स्वामी जी महाराज की। सद्गुरुदेव महाराज की।